आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 9। ॐ नमः सिद्धेश्वर, ॐ नमः सिद्धेश्वर, ॐ नमः सिद्धेश्वर, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊणं, लक्ष्मीनिवासनिलयं, विलीनविलयं, निधाय हृदिवीरम्, आत्मानुशासनमहम् वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, जिस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी जी के जो प्रवचन है सजानंद जी के, उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 43 पर हम आ गए। 43 आत्मानुशासन के प्रवचन, पेज नंबर 43। यहाँ श्रोताओं का वर्णन चल रहा था, पहले वक्ता की बात हुई थी, वक्ता कैसे कैसे होने चाहिए, अब श्रोता कैसे होते हैं या कैसे होने चाहिए उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। यहाँ कहते घोटक समय श्रोता, पहले हमने देखा था, घोटक यानी वो घोड़ा, घोड़ा घोटक यानी घोड़ा, ये कहाँ से शुरू हुई थी बात अपनी, हाँ पेज नंबर 27 से चल रही थी क्या, 7 नंबर का श्लोक, उसके बाद फिर और भी आया था, वही चल रहा है ना, 27 पेज से ये श्लोक चल रहा है। वो देखा ना, हमने तो भव्य होना चाहिए वगैरह वगैरह बातें की थी, यानी अपना हितरूप कर्तव्य क्या है इसके लिए उसको उसका विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, अंतरंग में उसको प्रायोगिक करने की उत्सुकता होनी चाहिए वगैरह वगैरह, हमने बहुत विस्तार से बातें देखी थी। 27 पेज से शुरू हुई थी बात, अभी हम अपना पेज 43 पर चल जाए। घोटक समय श्रोता है, वहां से हम पढ़ेंगे। श्रोताओं में कुछ ऐसे भी विपरीत आशय के श्रोता होते हैं, विपरीतता की बात अभी बता रहे, जिन्हें शास्त्र में घोटक सम कहा है, जैसे घोड़ा घास डालने वाले को ही काटता है, घोड़े में करीब करीब ऐसी आदत होती है कि घास डालने वाले को अपने दांत निकालकर हिनहिनाता है, वो कुछ मुंह भी पसारता है, तो जैसे घोड़ा घास लेने वाले को ही काटता है, यो कुछ श्रोताजन उपकार करने वाले वक्ता से भी द्वेष रखते हैं। सर्वत्र यह बात देखते जाना, जितने भी अवगुण श्रोता में हो सकते हैं, उन अवगुणों की जड़ केवल अपने हित की वांछा न रहना है। कोई द्वेष करता हो या श्रोता को कोई प्रश्न पूछकर कितना जानता है उसकी जांच करना चाहता है, या सभा में उधम मचाता है, जो कुछ है वो अपना हित नहीं चाहता, बस ये मुख्य बात है इसके अंदर। जो अपनी कुशल की चिंतना नहीं करते हैं, जिन्हें सांसारिक विषय वासनाएं सताती रहती है, उनको धर्मवार्ता सुनने, ग्रहण करने नहीं समझना, और अवधारण करना है नहीं, उसको धारण करना है नहीं, याद में रखना अवकाश ही नहीं है। हम इस भाव से सुने, हमें अपना हित करना है, ये मुख्य बात है। संसार के समस्त समागम ये मेरे शरणभूत नहीं है, इनसे मेरा कुछ पूरा न पड़ेगा। क्योंकि ये धन कमाना ये वो तो लोग तो कुछ ना बहाने बनाते हैं, हमें तो आमदनी करनी चाहिए, नहीं तो हम क्या खाएंगे, ऐसा है वैसा है। तो कहते कितना भी धन कमाओगे तो पूरा पड़ने वाला नहीं है और ना ही उसकी तृष्णा मिटने वाली है। ऐसा नहीं कि इतना हो गया अभी बस करो, अभी मैं साधय करो, ऐसा कोई नहीं कहता है। मुझे कुछ अपने आप में ही अंतस्तत्व निरखना है, जिसके दर्शन के प्रसाद से नियम से सुखपूर्ण अवस्था प्रकट होती है। अब कहते चलनी सम श्रोता, चलनी वो चालनी समझते ना, एक श्रोता चलनी सम बताया गया है। जैसे आटा छानने की चलनी चार सार चीज को तो नीचे गिरा देती है और छुकलन छिलका असार चीज को अपने आप के अंदर रख लेती है, ऐसे ही सार उपदेश पर तत्व की बात पर तो दृष्टि न जाए, उसे तो फेंक दे। और जो दोष की बात हो, कुछ त्रुटि की बात हो, यानी कल्पना में कुछ त्रुटि समाई हो, उसे ग्रहण कर ले। इस प्रवृत्ति में हम आपका कुछ लाभ नहीं है, यानी वो समझता है ये त्रुटि है, वो अपनी कल्पना से करता है। कुछ लोग अपने आप का बड़प्पन दिखाने के लिए भी वक्ता से चर्चा, प्रश्न, शंका, रोष अथवा कुछ चुभती हुई वचन शैली से बोलना आदि व्यवहार करते हैं। ये तो ऐसे बहुत से ऐसे मिलते हैं प्रश्न के, यानी प्रश्न सुनते पता चलता है कि कौन से आशय, उसका अभिप्राय क्या है प्रश्न पूछने के पीछे, क्या वो समझना चाहता है, क्या समाज अभी सुन रही है ना, ये प्रश्न करता है तो हाँ ये बहुत ज्ञानी है, देखो इतने वहाँ पो करता है, इतनी चर्चा करता है, या वक्ता से भी मैं ज़्यादा जानता हूँ ऐसा दिखाना चाहता है, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। तो इसकी बात चल रही है यहाँ पर। ऐसे श्रोताजनों को उपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं कही गई है। भैया करना क्या है, विडंबना और विपदा में तो हम आप इतने अधिक फंसे हुए हैं, देह के बंधन में पड़े हैं, कर्मों के बंधन में जकड़े हैं, केवल पड़े ने हम आप उस रूप मान रहे हैं, ये मुख्य बात है। मिथ्या दृष्टि है, वो अपने को देह रूप मान रहा है, कर्म के उदय के जो फल में उस रूप मैं हूँ ये मानता है। वैसे तो ये कर्म के बताए गए ना, तो राग है, द्वेष है, सुख है, दुख है, और ये वहाँ उस निमित्त के अनुकूल वो स्वयं वहाँ परिणमन करता है। अपराध तो इसका स्वयं का है और भी मानता भी मैं उस रूप हो गया, ये उसकी भूल है। इसलिए कहते कि देह के बंधन में पड़े हैं, कर्मों के बंधन में जकड़े हैं, निश्चयता अपने आप के विभाव के बंधन में जकड़े हैं। विभाव का बंधन है, वो विभाव भले हो रहा है, हमने अपने को उस रूप मान लिया, ये अपनी भूल है। सबसे बड़ी भूल तो ये है। इतने कठिन गुलामी में पड़े हैं और फिर इन मायामय रूपों को मायामय लोगों में दिखाने की माया में कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये, किसको दिखाना चाहते हैं, समाज के अन्य लोगों को कि मैं बड़ा बहुत होशियार हूँ, वो भी कैसे, तो वो भी माया में है कह रहे हैं। और इसकी कोशिश भी कैसी हो रही, तो माया में कोशिश हो रही है। इसमें सार क्या मिलेगा, गुप्त ही गुप्त अपने आप में ही अपने आप को बसा कर चिंतन करके बातचीत करके कुछ हित की समस्या हल कर ले, हितकारी पाए, यह हम सबके लिए लाभकारी बात है। यानी उसमें अपने हित की बात अगर कुछ मिल जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई प्रश्न पर कोई अर्थ समझ में नहीं आते हैं तो अटक जाते हैं वहाँ पर, उसी के बारे में बार बार चिंतन चलता है, फिर उसके लिए प्रश्न किए जाते हैं। 44 पृष्ठ पर आए, मशक सम श्रोता, मशक समझते है, दंश मशक, मशक यानी वो तो मच्छर, यानी वो काटने वाले कोई, यहाँ क्या लिखा है, अच्छा, मशक यानी वो पानी वाले हो, हो, मुझे लगा मशक है ना, वो मच्छर
नहीं
नहीं नहीं वो पखाल, पखाल मराठे में पखाल कहते हैं उसको,
पानी के ऊपर का मच्छर।
वो रास्ता बनाते हैं ना, वो तो ऐसे चमड़े का बैग लेते हैं, उसमें पानी भर के वो डालते हैं ना, उसको कहते हैं मशक। बराबर आपको याद है, बराबर गुजराती मशक कहते क्या, मराठी में पखाल कहते। मुझे वो दंश मशक वाला मशक लगा। कुछ श्रोता मशक समा बताए गए हैं, जैसे हवा से भरी हुई मशक ऊपर से कितनी सुहावनी लगती है किंतु भीतर रिक्त है, यानी हवा से भी उसको खोल सकते हैं ना, वो तो लगे कि अंदर से पानी भरा है पर अंदर कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसे ही ऊपर से हम अपना धर्मात्मापन प्रकट करें किंतु तत्व ज्ञानानुभूति इसमें न बसी हो और अपने कषाय संस्कार के माफिक ख्याति तो धर्मात्मा के रूप में चाहे, और जो आत्मा की ख्याति है, ख्याति ने प्रसिद्धि है, वह हमें न बस पाए। क्या कहना चाहते हैं, यानी कषाय वश हम अपने को धर्मात्मा, किधर दुनिया में समाज में हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, परंतु अपने आत्मा की प्रसिद्धि ख्याति तो उसके हुई नहीं, आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं है, तो हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। श्रोताओं के संबंध में भलापन क्या क्या होते हैं इसका वर्णन 3 दिनों से चल रहा था। आज क्योंकि यह भूमिका समाप्त हो रही है और ग्रंथ के वक्तव्य का आरंभ अगले छंद से होगा, तो कुछ विपरीत आशय वाले श्रोताओं की बात कह रहे हैं। पहले तो श्रोताओं के अच्छे अच्छे गुण बताए थे, आत्मानुभूति यानी उत्सुक होना चाहिए, प्रयोगशील होना चाहिए वगैरह वगैरह बातें, अब ऐसे विपरीत बुद्धि वाले श्रोताओं की भी बात यहाँ बता रहे हैं, ताकि हम उस विपरीतता को जानकर उस विपरीत आशय को त्यागें, हृदय को स्वच्छ बनाएं, ताकि इस इष्ट उपदेश को धारण करने के पात्र बन सके। सर्पसम श्रोता, हम शास्त्र सुने किंतु सुनकर उसमें से केवल दोषमयी बातों को ही उगले, दूसरों को बताए, क्या हुआ आज, यो यो कैसे किया, किसी शब्द के 3-4 अर्थ भी हो सकते हैं, उसमें से हितकारी अर्थ को त्याग कर अनिष्ट अहित अर्थ का ख्यापन करके हम केवल दोषों का ही विस्तार करें, तो ऐसे स्थिति में ऐसे श्रोताजनों को शास्त्र में सर्पसम कहा गया है। दृष्टांत में यूं जानना कि जैसे सर्प दूध पीवे तो वह अमृत अथवा एक शुद्ध रस नहीं बनता, वह विषरूप ही परिणत होता है, ऐसे जब हम में कोई पर्याय बुद्धि की बात अटकी है, मैं मनुष्य हूँ ऐसे ही परिणमन, इसमें ही आत्मीयता की प्रसिद्धि है। क्या कहते हैं, मनुष्यपने में ही मैं पना, उसका अहमपना भरा हुआ है। अब मैं मनुष्य हूँ के क्या, क्या आगे भी मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मैं समाज का कार्यकर्ता हूँ, लोग मुझे मानते हैं, तो ऐसा अपने को मानकर बैठा है, इसको कहेंगे पर्याय बुद्धि। तो वहाँ ब्रह्म स्वरूप की बात, ब्रह्म स्वरूप है, हम शुद्धात्मा की बात जो कर रहे हैं, हम स्वयं जो आत्मा है उसकी जो बात है, उसकी बात, उसका गुण स्वभाव हमारे ग्रहण में नहीं आ सकता। सभी इन अवगुणों के संबंध में यह जानते जाएं कि जब तक आत्मकल्याण की भावना नहीं जगती है तब तक नाना प्रकार के अवगुण हम में समाये रहते हैं। यानी एकमात्र कौन सी भावना होनी चाहिए कि आत्मकल्याण की, हम जो कुछ सुन रहे हैं वो आत्मकल्याण एकमात्र उसका प्रयोजन होना चाहिए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवगुण उसमें समाये रहते हैं। आत्महित की विशुद्ध भावना जगने पर वे सब गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, जो पहले हमने गुणों की बात की थी वो, और सर्व दोष स्वयं टल जाते हैं। जैसे व्यवहार में एक विनय गुण ऐसा है कि निष्कपट निस्वार्थ विनय वासना की सिद्धि, विनय की परिणति की जाए, तो उसमें सभी गुण स्वतः प्रकट होने लगते हैं। ये व्यवहारिक बात है, उसमें विनय से वो सब शोभा देते। अब कहते हैं महिष सम श्रोता, महिष है भैंस, भैंसा या भैंस, हाँ, कुछ सुनने वाले ऐसे भी विपरीत आशय के होते हैं जो स्वयं भी कुछ ग्रहण न करे और वातावरण भी गंदा बना ले। ये महिष समय क्यों कहा, वो तो पानी जहाँ इकट्ठा होता है ना वहाँ जाता है और अंदर ही अंदर वो तो फिर वो कीचड़ भी उछलता है तो पूरा ही पानी आजू बाजू का भी गंदा कर देता है। ऐसे इसको बताया कि स्वयं तो कुछ ग्रहण न करे और वातावरण को गंदा बना ले। बोलकर चर्चा करके क्रोध भरी प्रवृत्ति दिखाकर कि समस्त अन्य श्रोताजनों का भी बिगाड़ कर दे, ऐसे श्रोताओं को महिष सम बताया गया है। अपने आप में भलापन प्रकट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अवगुणों की जांच करें। हमारे में अवगुण हो तो उन्हें निकाल कर अपनी स्वच्छता बनाएं। विड़ाल सम श्रोता, भैया बिलाव को देखा होगा, कहीं दूध रखा होगा तो वह दूध पीना तो भूल जाएगा और दूध रखे हुए बर्तन को उलट देगा। ऐसे ही उपदेश को धारण करना तो दूर रहा, उस उपदेश के समय का, वातावरण का इसने ऐसा उलट पलट कर दिया कि वह सब अवसर चला जाए। श्रोताओं के गुण और अवगुणों की चर्चा चल रही है, कोई यदि इस बात को सुनकर स्वयं में कोई कमी हो और ऐसा सोच ले वाह ये तो हमारा लक्ष्य करके यूँ कह रहे हैं, तो भाई ऐसी बात नहीं है। ये तो उस श्लोक में जो आया है उसकी बात बता रहे हैं, किसी को लागू होती है तो लागू होती तो अपना दोष सुधारने तो कहते किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहे, यह प्रकरणवश कहा जा रहा है। उस क्रम का भंग न करके इस प्रकरण को पूरा करने के बाद इस ग्रंथ में आत्मा के लिए किस प्रकार अनुशासन किया है, नाम ही है ना आत्मानुशासन, कैसे आत्मा को कुपथ से हटाकर सत पथ में लगाने की प्रेरणा की है, कितने कोमल और प्रिय शब्दों से संबोधन किया है, ये सब बातें इस ग्रंथ में पाकर अपने आप का प्रकाश पाएंगे। अपने आप का प्रकाश है अपने आत्मानुभूति हो जाए। सारभूत तत्व, समस्त शास्त्रों में उपदेश का सारभूत फलभूत उपदेश सुनने योग्य तत्व मात्र इतना ही है कि हम अपने आप को यथार्थ समझ जाएं। क्या तात्पर्य पूरा, कि हमें अपने को पहचानना है, अर्थात पर की अपेक्षा बिना, पर के संबंध बिना, केवल अपने आप ही मेरा जो स्वरूप रह सकता है उस स्वरूप को हम परिचय में पाए। क्या कहना चाहते हैं, पर की अपेक्षा बिना, पर की अपेक्षा नहीं वो शरीर की अपेक्षा बिना, हम अपने को शरीर की अपेक्षा से सोचते हैं ना, काला हो या गोरा हो या ऊंचा हो या टिंगड़ा हो जाड़ा हो या बारीक हो जो कुछ हो, पर की अपेक्षा बिना, पर की अपेक्षा बिना, मैं संपत्ति की अपेक्षा बिना, मैं धनवान हूँ तो समाज में मेरे बहुत क्रेडिट है वो लोग मुझे मानते हैं, उसकी अपेक्षा बिना, ये कहना चाहते हैं। इसमें कितना आप लगा लो उतनी सब बातें आएगी, तो अपने परिवार वाले है धन बहुत अच्छा है परिवार हाँ माल बच्चे सब है तो उसकी अपेक्षा से हमने अपने को ग्रेट समझा, किसी को बच्चे नहीं होंगे तो अपने को हीन दीन मान लेता है ना, किसी की शादी नहीं होती तो अपने को हीन दीन मानता है, हो सकता है कि किसी की शादी हो गई और पति या पत्नी मर गए तो अपने को हीन दीन मानता है, तो पर की अपेक्षा बिना अपना केवल अपना स्वरूप क्या है। ये मनुष्य शरीर धारण किया हो तो ये एक बहुपूर्ता है, या शरीर ये हमारा स्वरूप है ये नक्की करना है कि शरीर की, मैं तो शरीर बिना का ही हूँ, शरीर तो अचेतन जड़ है, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं तो बस चैतन्य स्वरूप हूँ, ये पर की अपेक्षा बिना ये मेरा स्वरूप है, इसमें राग को भी अपने में नहीं रखना है। तो क्या कहते देखो पूरा सार क्या है, तो अपने आप को यथार्थ समझे, अर्थात पर की अपेक्षा बिना, पर के संबंध बिना, केवल अपने आप ही मेरा जो स्वरूप रह सकता है उस स्वरूप को हम परिचय में पाए कि मैं क्या हूँ। इस सहज स्वरूप के परिचय, ये इसको कहेंगे सहज स्वरूप परिचय के प्रसाद से, यानी उस परिचय के कारण, उसी से ही यह मोह का महान संकट टलता है। हमें संकट अन्य किसी चीज का नहीं, मोह का है। आत्म परिचय बिना क्लेशों का प्रसंग। जगत के सभी जीव एक परमानंद स्वभाव वाले हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। परंतु क्या ऐसा माना क्या हमने? हमें तो बहुत कष्ट है, हमें तो बहुत क्लेश है ना? क्योंकि जीव पदार्थ ही कैसा है, तो परमानंद स्वभाव वाला, तो सभी जीव परमानंद स्वभाव वाले हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। किंतु कष्ट रहित केवल ज्ञान आनंद स्वरूप मेरा है, इसका जब परिचय नहीं होता, तो चूंकि आनंद का कुछ न कुछ परिणमन करते रहने का इस जीव का स्वभाव है, इसे ऐसा अपना तो परिचय है नहीं। तब परवस्तुओं में बुद्धि अटकती है और वहाँ यह निर्णय बनाता है, ये भोग, ये विषय, ये पदार्थ मेरा हित करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। आनंद तो इसका स्वभाव ही आनंद का है, इसलिए वो तो आनंद तो ढूंढता है, तो कहाँ ढूंढ रहा है? तो भोगों में, विषयों में, पर पदार्थों में। किंतु बात होती है उल्टी, कारण कि भिन्न और क्षणिक पदार्थ में इसने आत्मीयता की, आत्मीयता ने उसने मैं हूँ या मेरे है ऐसा मान लिया। इसने भिन्न पदार्थों में और क्षणिक पदार्थों में, क्षणिक पदार्थ इसलिए कहा कि वो तो उद्गल के स्कंद है, वो तो क्षणिक है, वो तो पर्याय है, वो तो बदल चली जाती है। जो कभी मेरे हो नहीं सकते उनको अपना मानना, अपना समझना, यह तो क्लेश का ही कारण है। मोह मत्त की चेष्टा पर एक दृष्टांत। मोह से मत्त, मत्त है ना, वो तो जैसे मदिरा पीकर कोई मत वाला बन जाता है, वैसे मोह से मत्त होता है, उसकी चेष्टा, उसके जो प्रयत्न होते, उसकी जो कुछ आचरण होते, उसकी बात दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। जैसे मार्ग में सड़क के किनारे किसी गांव के निकट कोई पागल आदमी बैठा हो, सड़क पर से अनेक लोग गुजरते हैं, कोई मोटर वाले, कोई तांगे वाले, सभी वहां से गुजरते हैं, वे अपना मोटर तांगा आदि खड़ा करके खाने पीने के लिए कुएं पर आ जाए और फिर खा पी कर अपने मोटे तांगा आदि को लेकर वे तो चले जाते हैं, पर यह पागल दुखी होता है, हाय मेरी मोटर चली गई, मेरा तांगा चला गया। इसका था कब, वो तो कुछ काल के लिए वहां कर रुका था, वो अपने कारण से ये मानता है मेरा हो गया। ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे ही ये समस्त पदार्थ अपनी परिणति से ही मेरे निकट आते हैं, अपनी ही परिणति से बिछुड़ जाते हैं। किंतु निकट आने पर इस मोहोन्मत्त प्राणी ने पर में ऐसी कल्पना बना ली है, यह चीज तो मेरी ही है, पर वह चीज कब तक रह सकेगी? अपनी अवधि पर, अवधि यानी उसकी जो मर्यादा है, उसकी लिमिट है, उसका वियोग होगा तब यह दुख होता है, हाय मेरा पिता गया, मेरी माँ गई, मेरा पुत्र गया, मेरा धन गया, इस प्रकार हाहाकार करता है, रुदन मचाता है। सभी पदार्थ अपनी परिणति से ही अपने निकट आते, अपनी परिणति से बिछुड़ जाते, परंतु इसने तो कल्पना बना ली ये मेरे हैं, और बिछुड़ जाने पर दुख करता है। आए तो कहता कि नहीं मेरे कारण आए हैं, या मैंने उसको इकट्ठा कर दिया। आगे का पैराग्राफ। क्लेश विनाश का उपाय भूत परिज्ञान। समस्त दुखों के मिटाने का उपाय मात्र इतना ही है, जो बड़ी धीरता से सुगम रीति से कर लिया जाता है, निज को निज, पर को पर जान। इतना ही करना, क्या है? जो मैं हूँ वो मैं और मेरा है, वो निज, निज को निज जानो, पर को पर जान। इसमें पर को ही मैं हूँ मान लिया है और ये मेरा है मान लिया, अपना जो सहज आत्म स्वरूप है, बारंबार सहज शब्द आता है क्योंकि देखो गुण तो सारे अनादि से है ही है, उसमें कोई अभी नया आने वाला नहीं, कोई किसी के कारण मिलने वाला नहीं, और गुणों का परिणमन है वो भी अपने ही कारण है। देखो यहाँ इसी बात सहज में ये बात लेनी है कि जो जैसे गुण है उसका जो स्वरूप है स्वभाव है, वैसा जो परिणमन है स्वभाव रूप परिणमन, वो स्वभाव परिणमन भी उसके स्वभाव में ही लेना है। और जो राग द्वेषादि जो कुछ विभाव रूप उत्पन्न हुए है तो इसका ही परिणमन, परंतु उसने भूल क्या की है, ये भी मेरा परिणमन है, ये भी मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वभाव है, मान लिया उसको स्वभाव से बाहर सोचा, यानी मेरे अनंत गुण और उनका स्वभाव परिणमन ये मैं, इतना वो सहज नहीं है लेना। क्या कहते थे तो फिर पढ़ते इसको, अपना जो सहज आत्म स्वरूप है उसे तो यह मैं हूं यूं जानो, और इस आत्म तत्व के सिवाय अन्य जितने भी पदार्थ हैं, धन वैभव संपदा है इन्हें पर जानो, बाल बच्चे हैं जो कुछ है पोते है जो कुछ है वो सब पर जानो, वो अपने कारण है हमारे संयोग में आए हुए, हाँ उनके प्रति जो कुछ लगा होगा वो सब बातें वो रहने दो, पहले पहले नक्की करना है। ये समस्त परद्रव्य अपने ही चतुष्टय में तन्मय होकर रहा करते हैं, यह मैं आत्म पदार्थ अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तन्मय यानी उसमय होकर रहा करते हैं, रहा करते करता हूँ चाहिए, यह मैं लिखा ना करता हूँ, मेरी जो शक्ति है और उन शक्तियों का जो परिणमन है, क्या कहते हैं शक्तियां यहाँ कौन चल और उनका जो परिणमन है, बस उन शक्तियों में और व्यक्तियों में ही, व्यक्तियों ने उसके पर्याय परिणमन, शक्तियों में और व्यक्तियों में ही मैं तन्मय रह पाता हूँ, अन्य पदार्थों की शक्तियों और व्यक्तियों में कोई अन्य पदार्थ प्रवेश भी नहीं कर सकता। प्रत्येक का स्वचतुष्टय भिन्न है, कोई दूसरे के गुण पर्याय को उत्पन्न भी नहीं कर सकता है, उस रूप हो भी नहीं सकता है। मेरा जो क्षेत्र है मैं जितने में विस्तृत हूँ, विस्तृत है फैलाव मेरा जो कुछ है, उस निज क्षेत्र में ही मैं रहा करता हूँ, पहले में पहले अपनी शक्तियां ली द्रव्य क्षेत्र काल भाव बता रहे ना, तो द्रव्य ने तो गुणों का समुदाय जो है वो शक्तियां ली और उसका परिणमन लिया, गुण पर्यवत द्रव्य उसको यहाँ लिया पहले, कि अपनी शक्तियां और उनका परिणमन है उसमें मैं तन्मय हूँ, फिर ले लिया लास्ट लाइन में मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो जितने में मैं विस्तृत हूँ उस निज क्षेत्र में ही मैं रहा करता हूँ, शरीर में बस कर भी शरीर का क्षेत्र जुदा है मेरा क्षेत्र जुदा है। देखो हमें क्या लगता है हम एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, पर एक आकाश के एक क्षेत्र में हमें अपना अपना क्षेत्र हमारा जुदा है, एक ही उतने स्पेस में मैं जीव द्रव्य भी हूँ और उसी स्पेस में शरीर के परमाणु भी हैं, उसी स्पेस में कर्म भी है, उसमें उसी स्पेस में काल द्रव्य के भी कुछ काल द्रव्य भी कुछ हो गए, धर्म द्रव्य का कुछ पार्ट है, अधर्म द्रव्य का पार्ट है, सभी छह द्रव्य है वहाँ पर आकाश के एक क्षेत्र में, परंतु हर एक का अपना अपना क्षेत्र जुदा जुदा है, अपना जो उसका मटेरियल है वो जुदा है, आत्मा का जुदा है, पुद्गल जुदा है, धर्म जुदा, धर्म जुदा, काल जुदा है, तो कहते शरीर का क्षेत्र जुदा है मेरा क्षेत्र जुदा है, आके लिखा देखो आकाश के एक ही क्षेत्र में मेरा क्षेत्र भी पड़ा हुआ भी लगाया, अन्य द्रव्यों के क्षेत्र भी वहीं पर है, शरीर का क्षेत्र भी पड़ा हुआ है, लेकिन स्वक्षेत्र की अपेक्षा मेरा क्षेत्र पृथक है, शरीर का क्षेत्र पृथक है, मैं अपने ही क्षेत्र में इन्हें प्रदेश में तन्मय हूँ उसमय हूँ, मेरा जो परिणमन होता है उसी परिणमन में तन्मय हूँ। ये काल हो गया, द्रव्य क्षेत्र काल। मैं किसी भी अन्य की परिणति में तन्मय नहीं हो सकता। यानी जीव अपने ही द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और भाव में तन्मय है। वो किसी अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी भी रूप से कुछ अन्य नहीं हो सकता। भेद विज्ञान में गुणों का विस्तार। जैसे जब किसी के बुखार आए तो बुखार का अनुभव किसे होगा? सभी प्राय जानते हैं बुखार का अनुभव उसे ही होता है जिसे बुखार आता है। दूसरे को बुखार आए तो उसके थर्मामीटर लगाकर निरख लेते हैं कि इसके इतना बुखार है, लेकिन उसके बुखार का अनुभव नहीं हो सकता। यह साधारण ज्ञान हुआ। हमने बहुत बार ये बात की थी, ज्ञान और वेदन कहो, ज्ञान और अनुभव कहो, उसमें क्या अंतर है? दूसरे को बुखार आया, हमने जान लिया, वो तो ज्ञान हुआ, सामान्य से ज्ञान हुआ। परंतु उसका अनुभव जिसको आ रहा है बुखार, उसी को होता है। पीड़ा जिसको, उसी को उसका अनुभव होता है। इसी प्रकार मेरे में जो कल्पना जगती है वह मेरे ही अनुभव की तन्मयता से होती है, किंतु दूसरे किन्हीं भी जीवों के किसी भी परिणमन का अनुभव नहीं होता। यानी मेरा अनुभव किसको होता है? तो जो मेरे पर्याय में उसका मेरा अनुभव होता है, अन्य के जो पर्याय का मुझे अनुभव नहीं होता, ज्ञान हो सकता है। यो मैं सबसे न्यारा हूँ, अपने आप में हूँ, ऐसा भेद ज्ञान होने पर कल्याण की भावना जगती है। कल्याण भावना में समस्त गुण उपस्थित हो जाते हैं। बक और शुक समस्त होता, वो बक हुआ, वो बक चाहिए, ब चाहिए। बक और शुक समस्त है ना, शुक है ना तोता, बक है ना वो बगला। कोई श्रोता बक सम कहे जाते हैं, वो व हो गया शब्द, ब करना। जैसे बगुला ऊपर उज्जवल है किंतु अंतरंग में मलिन है, क्योंकि वो बाहर से भले वो अच्छा दिखे परंतु अंदर से चाहता है कि मैं कब अभी मछली को पकड़ लूं। ऐसे ही कोई श्रोता पुरुष ऊपर से वचन और काय की प्रवृत्ति से उज्ज्वलता प्रदर्शित करते हैं, किंतु मन दोष ग्रहण, पाप सेवन आदि दुर्वृत्तियों से मलिन रहता है। जिनके निज कुशल कामना नहीं है उनकी ऐसी ही मायाचारमयी परिस्थिति हुआ करती है। कोई श्रोता तोता सम होते हैं, जैसे सुआ को, सुआ ने तोता, उसको शुक कहो सुआ कहो, बात देखिए। जितना सिखाओ उससे जितना बुलवाओ उतना बोल लेता है, किंतु उस बोल का अर्थ या भाव कुछ भी उसके ज्ञान में नहीं है। ऐसा ही कोई श्रोता कुछ बार बार सुनकर रट लेते हैं, किंतु उन शब्दों का क्या भाव है वह हृदय में नहीं उतरता। उसका भाव भाषण नहीं होता है, बस शब्द रट लेते हैं, बोल भी लेते हैं। जिनकी बुद्धि विषय कषाय के संस्कार में लगी है उनके उपयोग में तत्व मर्म नहीं समाता है। उसका रहस्य उनके ख्याल में, उसका मर्म चूक जाते हैं। भले शब्दों को रट लेते हैं परंतु उसका भाव उनके पकड़ में नहीं आता। मृत्तिका व दंश सम श्रोता। कोई श्रोता मृत्तिका सम होते हैं, जैसे मिट्टी गीली हालत में कोमल रहती है, जैसा चाहे मोड़ लो उसे, उससे जो चाहे बर्तन बना लो, किंतु सूख जाने पर वह कठोर हो जाती है। उसे फिर रंच भी मोड़ नहीं सकते और न उससे फिर कोई दूसरा बर्तन बन सकता है। वह फूट फूट कर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी किंतु उससे कुछ बन न सकेगा। ऐसे ही कोई श्रोताजन शास्त्र सुनते समय तो कोमल परिणाम वाले रहते हैं किंतु उसके बाद जो के त्यों कठोर हो जाते हैं। लोग हमको बोलते भी है, जब सुनते तो अच्छा लगता है, ऐसा सीधा लगता है, जब बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं, परिणाम बिगड़ जाते हैं। जिनके मूल लक्ष्य में आत्महित की भावना नहीं बन पाई है उनकी ऐसी कठोर स्थिति बनी रहती है। कुछ श्रोता दंश मशक सम कहे गए, ये मशक मम्मी बता रही थी, दंश मशक। जैसे दास अपने चोंच से इंजेक्शन देकर मनुष्यादि को सता डालते हैं, अभी चल रहे हैं ना डेंगू, हाँ उनकी वो तो सुई जैसी होती है, सुई जैसी होती है उनकी, सुन नहीं थी, अभी कुछ बताओ उसको, इंजेक्शन देते हैं। ऐसे स्थिति को, ऐसे इस स्थिति के श्रोता कुवचन बोलकर वक्ता को खेद पहुंचाते हैं, जिसको आत्मस्वरूप का भान नहीं हुआ है और तीव्र कषाय वासना रहती है, उसकी ऐसी ही दुष्प्रवृत्ति होती है। जोंक सम श्रोता, कुछ श्रोता जोंक सम हुआ करते हैं, जैसे जोंक गाय के स्तनों में भी लग जाए तब भी वहाँ दूध को ग्रहण नहीं कर सकती है, वह तो खून को और उसमें भी गंदे खून को ग्रहण करती है। ऐसे ही श्रेणी के, इस श्रेणी के श्रोता धर्मस्थल में, शास्त्र सभा में भी पहुंच जाए तब भी वहाँ वक्ता के उपदेश के गुण ग्रहण न कर सकेंगे, वे तो वहाँ दोष ही खोज कर या बनाकर ग्रहण करेंगे। यो श्रोता भले बुरे अनेक प्रकार के होते हैं। योग्य श्रोताओं में स्वहित भावना की प्राथमिकता। इनमें शुभ श्रोता चूंकि आत्मकल्याण भावना से पोषित है, अतएव ये उपदेश ग्रहण के पात्र होते हैं, किंतु अशुभ श्रोता अपने कषाय संस्कार के कारण न खुद उपदेश लाभ ले सकते हैं और न अन्य जनों का अवकाश बना रहने देते हैं। खेत की बात है, वे इतना श्रम भी करते हैं और फल उल्टा पाते हैं। हम सब आत्महित की भावना से वासित हों, ताकि ज्ञान लाभ पाकर अपना जीवन सफल कर सके। यहाँ तक भूमिका रूप में आचार्य देव वक्ता व श्रोता के लक्षण बताकर ग्रंथ के प्रारंभ में कल्याणार्थी जनों को हितकारी आदेश अथवा उपदेश देते हैं। पापा दुःखं धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धिमिदं तस्माद् विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मं। पापं यानी पाप को छोड़कर सुखार्थी सदा धर्मं चरतु। देखो, सुखार्थियों को हित निर्देशन। इस ग्रंथ के वक्तव्य के प्रारंभ में गुणभद्र आचार्य देव सुख के चाहने वालों को संबोधित करके एक आदेश और उपदेश दे रहे हैं। हे सुखार्थी जनों, ये सुख की इच्छा वालों के लिए बताते हैं, सुखार्थी जनों, समस्त जन इस बात को समझते हैं और सबके यहाँ यह बात सुप्रसिद्ध है कि पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है। इस कारण पाप को त्याग करके सदा धर्म का आचरण करें। ऊपर लिखा है पापा दुःखं धर्मात् सुखं इति सर्वजन सुप्रसिद्धं इदम्, यानी ये बात लौकिक में सभी जन में प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। तस्मात् इसलिए विहाय पापम, पाप छोड़कर सुखार्थी के सदा धर्म में आचरण करना चाहिए। पापों के 6 विकल्प। पाप के भेद कितनी ही दृष्टियों से कितने ही भागों में बांट दिए गए हैं। विकल्पों की दृष्टि से इन पापों को 6 भागों में बांटी है। मोह, काम, क्रोध, मान, माया और लोभ। मोह नाम मिथ्यात्व का है, जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा न मानकर विपरीत मान्यता देना, इसका नाम मिथ्यात्व है। मोह परिणाम में होता भी यही है। प्रेम का नाम मोह नहीं, इसे राग कहते हैं। ये तो क्योंकि लौकिक में उसको मोह है, मुझे इसके प्रति बहुत मोह है ऐसा कहने की, वो मोह मोह तो वो बात अलग है, उसकी बात नहीं कह रहे हैं। यहाँ तो मिथ्या अभिप्राय की बात हो रही है। हाँ मराठी का राग यानी क्रोध, क्रोध के लिए मुझे राग आया यानी मुझे उसके प्रति क्रोध आया। वो अनुराग कहते हैं, यानी केवल राग कहना है तो अनुराग कहो। प्रेम का नाम मोह नहीं, ऐसे राग कहते हैं। किसी परवस्तु के प्रति यह मेरी है, मेरे लिए हितकारी है, इस प्रकार की श्रद्धा बसी है। विपरीत श्रद्धा का नाम मोह है। लेकिन शीघ्रता में मोह और प्रेम को एक ही कक्षा में रख दिया है। अधिक प्रेम का नाम मोह कह दिया है और साधारण प्रेम होने का नाम राग कह दिया है। किंतु मोह में राग की परिभाषा नहीं घटित की है, इसमें अज्ञान की परिभाषा है। मोह का संबंध अज्ञान से है। राग और द्वेष तो मोह के फल है। करेंगे ना, अभी तो मोह की बात हो रही है। मोह राग द्वेष की वृत्ति पर एक दृष्टांत। जैसे हाथी को पकड़ने वाले शिकारी लोग वन में एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे पर बांस की पंछे बिछा देते हैं, उस पर एक झूठी हथिनी बनाकर उसी रंग के कागजों से मर देते हैं, उसे करेणु कुट्टनी बोलते हैं। और एक करीब 40-50 हाथ दूर पर एक दौड़ता हुआ हाथी बना देते हैं। अब जंगल का हाथी उस सुंदर करेणु कुट्टनी को देखकर उस हथिनी के समीप रागवश आता है। वह राग में इतना आसक्त है, काम वासना से इतना पीड़ित है कि वह उस रहस्य का ज्ञान नहीं कर पाता है कि यहाँ गड्ढा है और यह झूठी हथिनी बनी है। सामने हाथी को देखकर उसे विषय बाधक जानकर उससे द्वेष करता है। जो मोह राग द्वेष के वशीभूत होकर उस गड्ढे पर आता है, वे बांस की पंचे जो बिछी थी टूट जाती है, वह हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। इस वनहस्ती ने मोह राग द्वेष की पीड़ा सही है। मोह तो उसका अज्ञान रूप था, यह झूठी हथिनी है, इसका उसे ज्ञान नहीं रहा। राग उस झूठी हथिनी का था और द्वेष उस विषय बाधक झूठे हस्ती का था। यह वह हस्ती मोह राग द्वेष के वश होकर शिकारी के पंजे में पड़ जाता। मोह पाप राज। पापों में मुख्य पाप है मोह, मिथ्यात्व। जगत के दृश्यमान पदार्थ बिल्कुल भिन्न है, न साथ आए हैं न साथ जा सकेंगे। यह देह भी मेरे आत्मा से भिन्न है, लेकिन मोह पर्याय बुद्धि कितना कलुषित कार्य होता है, इस देह को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। यही मैं हूँ, इस शरीर में चलते हुए कहीं भीत की कलाई का दाग लग जाए तो उसे साफ किए बिना चैन नहीं पड़ती है। यह एक भीतर का परिणाम है। समझ में आती बात? चलते चलते दीवार का रंग लग गया ना, तो पहले उसको साफ करेंगे, है ना। ये कह रहे उससे बिना चैन नहीं पड़ती। यद्यपि किया सब कुछ जाता है, किंतु भाव की गति की विचित्रता है। पापों में मुख्य पाप है मिथ्यात्व। यह मैं आप आत्मा अपने आप निरापद हूँ। आपद ने संकट और निरापद हूँ, अतः निरपेक्ष रूप से, अर्थात कोई पर उपाधि से संबंध नहीं होता, निमित्त नहीं होता, स्वयं अपने आप यह मैं आत्मा कैसा हूँ, केवल ज्ञान भाव रूप और ज्ञान भाव के अविनाभावी आनंद रूप यह मैं आत्म तत्व हूँ। यह अपना स्वरूप बता रहे कि मैं आत्मा कैसा हूँ, केवल यानी मात्र ज्ञान भाव रूप हूँ और ज्ञान भाव उसका अविनाभावी आनंद भाव होता ही आनंद रूप हूँ, ऐसा मैं ये आत्म तत्व हूँ। इसमें न रूप है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न स्पर्श है, न शब्द है, केवल आकाशवत निर्लेप अमूर्त किंतु चैतन्य प्रतिभास स्वरूप मैं आत्मा हूँ। चैतन्य प्रतिभास यानी वो जानन 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 क्रिया चल रही है, वो चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है, वो मैं आत्मा हूँ। इसका इस देह तक से भी संबंध नहीं है। जब मैं ऐसा विचार आता है तो ये देह वगैरह राग कुछ नहीं दिखने चाहिए, तब ये मैं उसने सच्चा मैं को पकड़ लिया। ये तो मैं मनुष्य हूँ, फिर मैं देह नहीं हूँ, मैं ऐसा वो उल्टा सोचता रहता, मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। पहले तो जो है उसको पकड़ो, तो उसमें वो बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा। यह देह अचेतन है, यह मैं जो कुछ समझ रहा हूँ वह चेतन है। कौन हूँ मैं? जो यहाँ समझने का कार्य चल रहा है ना, जो कुछ ज्ञान हो रहा है वो मैं चेतन हूँ। जब इस जीव का देह के साथ भी संबंध नहीं है, अन्य परिजन यानी अन्य अपने रिलेटिव जो कोई कुटुंबीजन मित्रजन धन वैभव इनसे तो कुछ संबंध ही कैसे हो सकता है। लेकिन इस भिन्नता को न जानकर इन्हीं पर पदार्थों में आत्मीयता की बुद्धि लग गई। आत्मीयता ना, ये मेरे हैं बस, उसके प्रति इतना लगाव हो जाता है। क्या कहते हैं कि देह के साथ भी संबंध नहीं है, तो ये जो हमारे सारे कुटुंबी जने हो तो देह के संबंध ही तो है, पुत्र है, पति है, कोई भी बहन है, भाई है, कौन है, ये सारे माँ बाप, ये तो देह से संबंध रखने वाले हैं। मित्र जन कहो, धन वैभव, तो किसी के साथ कुछ संबंध नहीं हो सकता। लेकिन इस भिन्नता को न जानकर इन्हीं पर पदार्थों में आत्मीयता की बुद्धि लग गई, इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? अज्ञान भ्रम अंधेरा ही सबसे मुख्य पाप है। अन्य पापों से तभी दूर हो पाते हैं वास्तविक मायने में, जबकि यह अंतरंग में मिथ्या तो प्राप्त दूर हो सके। अन्य पाप तो पाप लगते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील वगैरह, परंतु ये मिथ्या तो वाला पाप पाप ही नहीं लगता, क्योंकि इसको ही सबसे बड़ा पाप कह दिया। काम पाप द्वितीय पाप बताया है। काम, यद्यपि यह काम लोभ कषाय में ही गर्भित है, तथापि कुछ विशिष्टता है, इस कारण इसे अलग गिनाया है। जो पुरुष काम वासना से खिन्न हो जाते हैं वह आपे में नहीं रहता, उसकी दयनीय दशा दुर्दशा होती है। उसका इस लोक में भी बुरा होता है और परलोक में भी बुरा होता है। सुख चाहने वाले साधु संत जनों का यह कर्तव्य होता है, वे अपने इस ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व में लीन रहा करें, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में चर्या अर्थात लीनता करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के बाधक जितने भी परिणाम है उनका नाम है व्यभिचार। आत्मा में लीनता करना ये ब्रह्मचर्य, और उसके बाधक जो परिणाम है वो सिर्फ व्यभिचार में आ गया। कानों से कुछ सुनकर उसमें भी यदि राग द्वेष का परिणाम हो तो वह भी व्यभिचार है। आंखों से देखकर कोई खोटी कल्पना जगे अथवा किसी प्रकार का राग अथवा द्वेष का विकल्प हो, वह भी व्यभिचार है। किसी सुगंधित वस्तु को सूंघने की इच्छा होना, दुर्गंधित वस्तु से घृणा होना, यह भी व्यभिचार है। रसीला स्वादिष्ट भोजन करने की वांछा जगे, किसी स्त्री अथवा पुरुष विषय काम की वासना जगे, मैथुन प्रसंग होना, यह भी व्यभिचार है। यद्यपि ये सभी व्यभिचार है, किंतु लोक में प्रसिद्धि व्यभिचार की केवल काम वासना की है। इससे यह परिज्ञान करे, ब्रह्म स्वरूप के परिज्ञान में बाधक यह काम वासना अत्यंत बाधक है। क्रोध पाप तीसरा पाप है। क्रोध, देखो यहाँ हिंसा झूठ आदि बात नहीं की है। मोह काम क्रोध मान माया लोक,
काम को वापस लोक का ही रूप है।
वो तो है भी है ना, कषाय में तो वो आते ही है, नौ कषाय में वो भी आता है। ये सभी पाप दुख के कारण हैं। जैसे मोह में मार्ग नहीं मिलता, आकुलता ही बनी रहती है, आत्मसंतोष नहीं होता, यूं ही काम वेदना में तृप्ति संतोष नहीं होता, विवलता ही बनी रहती है, यूं ही क्रोध में यह जीव संतप्त हो जाता है। क्रोध आता है किस बात पर? अपने कल्पित इंद्रिय विषयों में कोई बाधा जची और उस बाधा में निमित्त जो कोई पुरुष हुआ तो उस पर क्रोध होता है। अर्थात परपदार्थ इस रूप पर्ण में कि वह हमारी कल्पना में हमारे विषय का बाधक जान जाए तो क्रोध होता है। अरे विषय ही एक विडंबना है, कोई मेरे पर विडंबना है, विपदा है, उस विडंबना और विपदा का कोई बाधक हो तो वह कैसे मेरा शत्रु है? समझ में नहीं है? जैसे अपने कोई जो हम कोई चीज चाहते हैं और उसमें जो कोई बाधक अन्य है तो उसके लिए क्रोध आता है, क्योंकि तो हमारी जो विषय वासना है कहो तो यही विडंबना है, तो विडंबना के लिए वो तो प्रतिस्पर्धी कहो या उसके बाधक, वो हमारा तो मित्र हुआ ना। समझ में क्या कहना चाहते? फिर से देखो, विषय ही एक विडंबना है, कोई मेरे पर विडंबना है, विपदा है, उस विडंबना और विपदा का ये क्या है? मेरे लिए मेरे विषय मेरे विपदा है, उसका कोई बाधक हो वह कैसे मेरा शत्रु है? जो मेरे शत्रु का भी शत्रु हो उसे तो मित्र समझना चाहिए, यानी विषय आदि तो मेरे शत्रु है, वो मेरा बुरा करने वाले हैं, और ये मेरे विषय में बाधक है, वो तो मित्र होना चाहिए। ये कहना हाँ, शत्रु का शत्रु मित्र होना चाहिए, नहीं समझना चाहते? ये विषय अच्छे लगते हैं ना, वो तो उसको शत्रु नहीं मानता है। मेरे शत्रु है ये सब विषय संस्कार, इनका जो बाधक है वह मेरा शत्रु नहीं है, किंतु मोह में उस शत्रु से शत्रु समझा जाता है और उस पर क्रोध आता है। यहीं रुकेंगे हम। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सुवाणी मस्तक सदा देत हो। सुशीला में